So, this is our final session.
तो हमारा यह आखिरी सत्र है.
Until the next event.
जब तक के दूसरा सत्र शुरू नहीं होता.
For Maitreya and I, this is the last event of our 2.5 months in India.
लेकिन मैत्रीवीर और मेरे लिए ढाई महीने का यह जो हमारा लंबी जो यात्रा थी उसका यह आखिरी सत्र है.
I didn't say lumpy. You're giving your own talk again. He's entitled to after 2.5 months of translating. So this is a chance, first of all, to sort out any questions that have arisen in the last 5 days.
तो पिछले 5 दिनों में जो कुछ भी किया उसके बारे में कुछ सवाल होंगे, कुछ संभ्रमियां होंगे.
हाँ.
Yeah.
Right. So the continuity of consciousness, what do you mean?
Yeah.
When?
After in the six element practice.
Ah.
Or maybe after the death.
Okay.
Will you be fine?
Right. You mean in the case of a prathagjana, an ordinary person, or in the case of a Buddha? Which are you asking?
In case of course, normal people.
Normal people.
Yeah,
Buddhas like us, yes.
Yeah, like us. So there is a continuity of
I see.
Karma, and
yeah.
Then, what's happened with the karma and
yeah.
Consciousness.
Yeah, yeah. Well, consciousness, first of all, it's important to recognize. Oh, did you need that in Hindi?
Ab batao na.
Well, first of all, we need to be clear about what we mean by consciousness.
तो सबसे पहले यह बात जरूरी है कि चेतना क्या है, उसे समझना आवश्यक है.
At least in respect of its being a conditioned and impermanent phenomenon.
कम से कम इस परिपेक्ष में कि जो unconditioned and impermanent.
A conditioned and impermanent.
जो संस्कारित है और जो अनित्य है इस परिपेक्ष में.
It's not really a phenomenon, but anyway, it the consciousness itself is conditioned and impermanent.
जो चेतना है वह अपने आप में संस्कारित है और अनित्य है.
So you don't, there's not a thing called consciousness that stays still. Otherwise, we're back in Atman territory.
तो ऐसी कोई चीज नहीं है या ठोस वस्तु नहीं है चेतना. ऐसा अगर हम समझेंगे तो वापस हम नित्यता में या आत्मा में आ जाएंगे.
Consciousness is a stream of ever-changing moments.
चेतना वह है जो क्षण प्रतिक्षण जो घटनाएं बदल रही है उसका प्रवाह.
At least as regards the conditioned phenomenon of mind.
कम से कम जो संस्कारित अस्तित्वता अस्तित्वता है जो जो है उसके परिपेक्ष में या जहां तक उससे जुड़ा हुआ सवाल है.
So we need to be quite careful about talking about consciousness bridging the gap between one life and another life.
तो इस बारे में हम जब सोचते हैं तो इसमें सावधानी बरतनी चाहिए कि चेतना अपना एक जोड़ बनाती है इस जीवन से उस जीवन तक.
Sometimes you hear people talking about it in that way.
कभी कभी लोग उस दृष्टिकोण से बात करने की कोशिश करते हैं.
As if this consciousness that is in this body, then it jumps out and jumps into a new body.
तो जैसे कि चेतना जो है यह पुराने शरीर से आती है और नए शरीर में छलांग मारती है.
That is atmavad.
वह आत्मवाद है.
And that is exactly what the Buddha Dhamma denies.
और निश्चित यही बात बौद्ध धर्म ने नकारी है.
But what you have is a a stream of energy generated by karma.
लेकिन क्या हमें मिलता है कि जो कर्मों के द्वारा जो ऊर्जा आती है उसकी सातत्यता की ऊर्जा हमें मिलती है.
So if you have a pool of water,
मान लीजिए कि कोई पानी का प्रवाह है.
And you make a splash at this end of the water.
और जहाँ प्रवाह है उसके अंत में आपने अगर जोर से ऐसा इन्हें मारा, थपका मारा.
Across the water goes a wave. Yeah?
तो जो तरंगे है वो पानी में तरंगे जाती है.
And it hits the other side of the pond.
और दूसरी ओर में या छोर में वो तरंगे जाके टकराती है.
So what we say is a wave goes across the pond.
तो आप ऐसा, हम ऐसा कह सकते हैं कि तरंग जो है यह उस पॉन्ड से या तपके से जाती है.
But actually, nothing goes across the pond.
वैसे देखा जाए तो कोई भी बात इस ओर से उस छोर तक जाती नहीं है.
The energy generated by your slapping the water creates a movement in the water.
तो जो ऊर्जा आपके थप या मारने से या वो छपक मारने से जो तैयार होती है उससे जो तरंगे आती है वह निर्मित होती है.
So the water on the far side and the water on this side are completely different.
तो जो पानी इस ओर है और जो पानी उस ओर है वह दोनों पूरी तरह अलग है.
But the energy of your hitting the water passes all the way through the water.
लेकिन जो हमारी ऊर्जा उस पानी को टकराती है या जाती है वह पूरी तरह दूसरी ओर में जाती है.
So you could say that's a metaphor for the way in which karma passes from one life to another.
तो ऐसा हम कह सकते हैं कि कर्म एक रूपक है उस शक्ति का या उस गति का जो इस ओर से उस ओर तक जाते हैं.
So what is that the karma that passes through?
तो ऐसी कौन सी बात है जो कर्म जो है जो इस कर्म से बहते हैं.
The most important point about it is that all that karma is based upon attachment to self.
तो वो जो सारे कर्म होते हैं वह स्व के आसक्ति के बुनियाद पर आधारित होते हैं.
It's based on tṛṣṇa.
वह तृष्णा के आधार पर होते हैं.
So it's that attachment to self that is the current, the wave passing through from one life to another.
तो वह आसक्ति है या कर्मों की जो जो तरंग है एक जीवन से दूसरे जीवन तक बहते जाती है.
I hope that gives you some idea of what I'm meaning.
शायद इससे आपको कुछ आशा, यानी मुझे आशा है आपको कुछ कल्पना आई होगी क्या मैं कह रहा हूँ.
According to Yogacara philosophy, there are two dimensions to that energy that's passing through.
योगाचार दर्शन के अनुसार दो ऊर्जा है जो उससे बहती है.
One is the energy of that grasping, self-grasping.
एक जो ऊर्जा है जो है स्व का आकलन.
And the other is the more particular form that self-grasping has taken.
और एक है जो विशेष आकार जिससे जो जो स्व जो है उसे आकलन आकलित करता है.
All the actions that you've performed of body, speech and mind have an energy as it were around that basic self-clinging.
तो जो कुछ भी हम काया वाचा मन से जो कृत्य करते हैं वह उस आसक्ति की ओर रहता है.
You could say that however you slap the water, the energy will pass across it.
कितना भी आप यानी पानी को मारिए जो ऊर्जा है वो जाएगी पानी से.
But the way in which you slap the water determines how it passes across it.
लेकिन कैसे आपने उस पानी को मारा है उस पे निर्भर करता है कि कैसे लहरें उठेगी.
You know, you can put your hands down, they go boom, and that creates a certain wave.
तो मान लीजिए आपने पानी को ऐसे दबाया तो कुछ तरंगे आएगी.
Or you can just slap the water, that will create a different sort of wave.
या केवल आप उसे मार लीजिए तो फिर अलग तरंगे आएगी.
You can push the water, that creates another wave.
और आपने पानी को ढकेला तो फिर अलग तरंगे आएगी.
So the self-clinging is the basic momentum of the rebirth passing from one life to another.
तो स्वासक्ति जो है यह basic
energy momentum.
मूलभूत क्षण है जो उसको गति में लाता है.
But the particular form it takes is determined by the specific actions you performed.
लेकिन विशिष्ट आकार या रूप ये जो लेता है यह निर्भर करता है कैसा वहाँ पे कृत्य आपने किया है.
So there's a continuing transmission of energy.
तो वहां पे निरंतर ऊर्जा का यानी चलन है. संचारितता है.
It's the same with electricity, isn't it?
वही बिजली के साथ है.
What we think is that when you plug in your plug, electricity comes out of the socket just like water coming out of a tap.
तो जैसे हम कोई यानी प्लग लगाते हैं तो हम ऐसे सोचते हैं कि वहां से ऊर्जा आती है जैसे पानी बहता है.
But actually what it is just the molecules and the what you call it, the electrons and so on in the atoms along the line are excited. They excite each other.
लेकिन वास्तविक क्या होता है, वहां के जो अणुरेणु होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक दूसरे को संचारित करते हैं, ऊर्जित करते हैं.
And it depends on the ampage and the voltage and the wattage, how they excite each other.
तो उसका वोल्टेज जो है, एम्पेज जो है, इस सबके ऊपर वह आधारित होता है.
So do you see what I'm getting at? Does that analogy make sense?
क्या यह रूपक काम कर रहा है?
So the main thing is desire, Krishna.
तो महत्वपूर्ण बात क्या है? तृष्णा.
And Krishna connected with I.
और जो तृष्णा है वह स्व से चिपटी हुई है, लगी हुई है.
That's why you can't really speak about an animal being reborn.
इसलिए हम नहीं बात कर सकते कि प्राणी के पुनर्जन्म के बारे में.
Because with an animal there's no I.
क्योंकि प्राणियों में स्व नहीं होता.
There's just the momentum of the species, you could say.
ऐसा कह सकते हैं कि वहां पे एक सजीव की निरंतरता है या संचारितता है.
So there's no, in a way, there's no individual desire.
तो वहां पे कोई ऐसी वैयक्तिक इच्छा नहीं है.
It's just the organism's struggle for survival.
तो वो सजीव का क्या है, अपने जीवितता का संघर्ष है, जीवित रहने के लिए जो संघर्ष है वह है.
For there to be rebirth, there has to be self-clinging.
पुनर्जन्म होने के लिए स्व आसक्ति की आवश्यकता होती है.
When there's no self-clinging, no rebirth.
अगर वहां स्वासक्ति नहीं होगी तो फिर पुनर्जन्म नहीं होगा.
So if you see what I mean, that karma is a state above the animal and below the Buddha.
तो कर्म जो है वह ऐसी अवस्था है जो प्राणियों से ऊपर है और बुद्ध से नीचे है.
So you could say that the energy generated in this life, the sanskaras, generates a moment of consciousness in the womb in a new life.
तो ये जो ऊर्जा कर्म की हम तैयार करते हैं वह एक नया जीवन गर्भ में तैयार करती है.
Now according to the book of the dead there is a continuity of conscious experience even beyond death.
तो book of the dead के अनुसार वहां पे चेतना की सातत्यता है जन्म के पश्चात भी, मृत्यु के पश्चात भी.
Yeah, you're all familiar with that, especially those who came on that retreat with me.
आप सब लोगों को शायद इसके बारे में ज्ञान होता जो होगा जो उस यानी बारडो शिविर में.
Yeah.
जो बारडो के शिविर में आए थे.
And what is said is that there is a subtle body that continues experience after death.
तो ऐसा कहा जाता है कि एक सूक्ष्म काया है या शरीर है जो मृत्यु के पश्चात निरंतर होता है.
It's called a manomaya kaya.
उसे मनोमय काया कहते हैं.
A body made of mind.
ऐसा शरीर जो मानसिक है या मनोमय है.
To me, we get some very distant echo of that in qi.
उसका एक दूर से या हल्की सी छलक हमें अनुभव में आती है जब हम ची का अनुभव करते हैं.
I can bring my hands together and I can feel the chi surrounding my two hands.
तो जैसे मैं दोनों हाथों को नजदीक लाता हूँ तो मैं इन दोनों हाथों की ऊर्जाओं को महसूस कर सकता हूँ.
Now I'm not saying that's the manomaya kaya.
मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि अब यह मनोमय काया है.
But what I'm saying is that there are levels of bodiness.
तो मैं ऐसा कहता हूँ कि शरीर होने के या उसके अस्तित्व के कुछ स्तर है.
This solid body.
यह जो है यह ठोस घनरूप शरीर है.
And then there are more subtle bodies connected with this body.
और वहाँ कुछ अधिक सूक्ष्म शरीर है जो यानी शरीर से जुड़े हुए हैं.
And there's a mind-made body which is kept, so to speak, in existence by self-clinging.
और एक ऐसी काया है जो यानी स्व आसक्ति से जुड़ी हुई है.
And it's not itself a fixed thing.
और यह अपने आप में कोई नित्य बात नहीं है.
It's constantly changing in accordance with your changing karma.
यह निरंतर बदल जा रही है जैसे जैसे हमारे कर्म बदलते हैं.
But what is said is that at the point that you enter the womb, in most people's cases, you lose continuity.
अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही हम गर्भ में प्रवेश करते हैं हमारी जो सातत्यता है हम उसे खो देते हैं.
And it's said in the case of a stream entrant that they enter the womb mindfully.
और ऐसा कहा जाता है कि जो श्रोतापन्न है वह स्मृतिवान होकर गर्भ में प्रवेश करते हैं.
But when they emerge from the womb, they lose that continuity.
लेकिन जैसे ही वो गर्भ के बाहर आते हैं उस निरंतरता को या सातत्यता को वो भूल जाते या छोड़ देते.
I can't remember that it's a non-returner or a once-returner when they enter the womb. It must be a once-returner because they're back for the last time. A once-returner leaves the womb mindfully.
तो जो ऊर्ध्वगामी कहते हैं अनागामी, जो अनागामी होते हैं वो अनागामी एक बार गर्भ में जाने के बाद फिर दोबारा नहीं जाते.
This is Theravada theory. I don't know anything about it personally.
यह थेरवाद का सिद्धांत है, मुझे व्यक्तिगत रूप से पता नहीं.
But it makes a certain sense. Yeah.
लेकिन इसका कुछ यानी अर्थ निकलता है, कुछ भाव है.
But that's a broad account of the continuity between one life and another.
लेकिन यह एक मोटा मोटा यानी उसकी समझ है एक जीवन से दूसरा जीवन जो निरंतर होता है.
But the thread running through all the beads on the mala is desire.
लेकिन इन सब मालाओं से जो धागा बुनता जा रहा है वह इच्छा है. या
That's what creates this house again.
वही जो है इस गृह को दुबारा बनाता है.
This is common Buddhist tradition.
और यह यानी सामान्य बौद्ध परंपराएं बताती है.
And the Buddha himself quite explicitly makes this clear.
और बुद्ध ने इसे अधिक स्पष्टता से यानी इसे बताया है, समझाया है.
According to Mahayana, there is another option.
महायान के अनुसार दूसरा और पर्याय वहाँ पर है.
When you've entered the stream of the Dhamma quite deeply and have experienced your deep solidarity with all life, you can enter the womb for their sake.
ऐसा कहते हैं कि आपने अगर पूरे एकाग्रता के साथ अगर आपकी वह इच्छा है तो आप औरों के हित के लिए गर्भ में आ सकते हैं.
And that's one of the elements in the Bodhisattva vow.
और वह एक प्रमुख तत्व है बोधिसत्व प्रतिज्ञा का.
I always think that's it's very significant that Baba Sahib put that vow to be reborn in his native land. Yeah.
तो बाबा साहब ने यानी अंत में यह जो चार बोधिसत्वों की प्रतिज्ञा लिखी.
No. The vow to be reborn in his native land. The last thing. It's after the four pratignas.
Okay. अंत में बाबा साहब ने आपके यानी सुखावती, right? सुखावती.
No. Just say what I've said. The vow to be reborn in the land of his birth. That's what it's titled.
तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा लेता हूँ आपके आपके भूमि पर पुनः जन्म लेने की.
Actually, the verse is about being reborn in Sukhavati, Amitabha's paradise.
लेकिन वैसे देखा जाए तो वह जो गाथा है वह अमिताभ के सुखावती में पुनर्जन्म लेने की है.
But Baba Sahib sort of puts it in a context that seems to be wanting to be reborn back in India.
लेकिन बाबा साहब इस परिपेक्ष में रखते हैं कि मैं वापस भारत में पुनः जन्म लूं.
So I think that's quite significant.
मुझे लगता है यह महत्वपूर्ण बात है.
And he ends, yes, before that with the four Bodhisattva vows.
और उसके पहले चार बोधिसत्वों की प्रतिज्ञा है.
So what can hold the identity together can be compassion.
तो जो कुछ भी पहचान इस वक्त जब इकट्ठा रखती है वह केवल करुणा हो सकती है.
You can as it were recreate the body for the sake of others.
तो आपने शरीर की यानी पुनर्रचना की रचना की है औरों के लिए.
So replacing desire is bodhicitta.
तो उस इच्छा को या तृष्णा को जो है बोधिसत्व चित्त
बोधिचित्त
तब्दील करता है.
Because bodhicitta is also desire.
क्योंकि बोधिचित्त भी एक इच्छा है.
But it's the desire for the well-being of others.
लेकिन यह औरों के कल्याणकारी या कल्याण की इच्छा है.
And as I said, well, Bhante mentioned to me that he didn't want to be reborn, but there is the Bodhisattva vow.
मुझे याद है भंते ने मुझे कहा कि मैं पुनर्जन्म नहीं लेना चाहता लेकिन वहाँ बोधिसत्व प्रतिज्ञा है.
So you can leave behind the self clinging.
तो जो स्व आसक्ति है उसे हम पीछे छोड़ सकते हैं.
You can leave behind your longing for this kamaloka.
ये काम लोग जो है उसकी जो चाह है उसे आप छोड़ सकते हैं.
But if you've got the bodhisattva spirit, well, that will bring you back.
लेकिन जो बोधिसत्व चेतना है उसे आप वापस ला सकते हैं.
This is what the tradition says. I'm only reporting what it says.
तो यह परंपराएं बताती है, मैं परंपराओं का वृत्तांत ही बता रहा हूँ.
At least in my understanding of it.
कम से कम जो मेरी जो इसकी समझ है.
But I think we must be quite careful about talking of consciousness being reborn.
तो हमने इसके बारे में सावधानी रखनी चाहिए कि चेतना का पुनर्जन्म होता है इसकी अभिव्यक्ति के लिए.
It's okay, you know, if you know what you're meaning.
यह ठीक है अगर आपको अगर इसका अर्थ ज्ञात है या समझता है तो.
But people very easily think back to Atman.
लेकिन लोग बहुत आसानी से उसे आत्मवाद में या आत्मा के परिप्रेक्ष्य में अर्थ में समझते.
You know, you're sitting in one car, driving it along.
जैसे आप एक कार में है और चला रहे हैं.
Then you go to the second-hand car man, you sell your old car, and you buy a new one, and you drive away in that.
तो आप दूसरी कार लेते हैं और नए कार में आप बैठते हैं.
It's not like that.
ऐसा नहीं है.
Not just the car changes, but the driver changes too.
केवल कार ही नहीं बदलती, ड्राइवर भी बदलता है.
हिंदी.
तो एक बल है वो काम के लिए, लेकिन उसी के साथ में दूसरा जो फोर्स है वो भी उसमें होता है.
Yes, it's a good point.
यह बहुत अच्छा मुद्दा है.
Of course, what will happen is that as you progress dhammically, that the second kind of progressive force will take over from the cyclic force.
तो जैसे हम धार्मिक प्रगति करते हैं तो जो चक्राकार बल है उसके ऊपर जो ऊर्ध्वगामी जो बल है वह हावी होता है.
But really, until arahatva, until asavakshaya jnana, there's still self-clinging.
लेकिन जब तक आसवक्षय ज्ञान नहीं होता है तब तक स्वासक्ति रहती है.
So the energy of self-clinging will even be there at that point.
तो जो ऊर्जा है स्वासक्ति की उस बिंदु तक भी वहाँ रहेगी.
But what you could say is that energy of self-clinging becomes increasingly or more powerfully associated with the energy of seeking release.
लेकिन वह जो ऊर्जा है वह इस बात की खोज करेगी कि कहाँ मुझे छुटकारा या मुक्ति मिले.
And of course, after stream entry, it's that energy of seeking release that is dominant.
और
after stream entry,
श्रोतापन्न होने के बाद जो मुक्त होने का जो बल होता है वह ज्यादा हावी होता है.
The stream that you enter is that second force.
तो आपने जिस प्रवाह में जन्म लिया है वह वो क्योंकि आप जिस प्रवाह में प्रवेश करते हैं वह वो दूसरा बल है, मुक्तता का बल है.
And that stream brings you back with a strong desire to get free even from self-clinging.
और वह जो प्रबल इच्छा है वह आपको मुक्त करती है स्व आसक्ति से भी.
You've broken the main element of it, but the deeper dimensions still have to be cleared out.
तो जो मूलभूत जो बातें उससे तो हम मुक्त होते हैं लेकिन फिर भी कुछ बची हुई जो बातें होती है जो संशय होते हैं उससे हमें मुक्त होना होता है.
But yes, if you've really become effective in the Dhamma, that element of longing for freedom will be there with you.
तो अगर आप धम्म में प्रभावी होते हैं तो जो मुक्तता की जो अभिलाषा है वह उसमें होगी.
But until stream entry, you can't be sure of it.
लेकिन जब तक आप श्रोतापन्न नहीं होते तब तक यह बातें यानी भरोसे की या पक्की है ऐसा नहीं कह सकते.
We know this even with dhammacharis and dhammacharinis too.
और यह हम धर्मचारी धर्मचारिणियों के यानी उनसे हमें समझता है.
I'm completely sure that everybody when they're ordained is sincerely and effectively going for refuge.
मुझे इस बात की पूरी यानी विश्वास है कि जब हम दीक्षित होते हैं तब हम पूरी तरह प्रामाणिकता से उसी बात के लिए कटिबद्ध होते हैं.
I'm completely convinced of that.
इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ.
But people go back, they're reborn into situations which are very difficult.
लेकिन लोग ऐसे जगहों में चले जाते हैं या पुनर्जन्म वहाँ उनका होता है जहाँ परिस्थितियाँ काफी कठिन होती है.
And it's very difficult for many to keep it up.
और काफी लोगों को उसे यानी सातत्य रखना कठिन होता है.
So that's what happens to people. You see it.
तो यह लोगों के साथ होता है, आपने इसे देखा है.
You don't even just see it in other people, you see it in yourself.
आप केवल औरों में ही नहीं देखते, हम अपने अंदर भी यह देखते हैं.
We see it in ourselves.
हम अपने आप में यह देखते हैं.
So that sort of suggests that until you've really got the Dhamma, well, you've entered the stream of the Dhamma, you can't be sure of anything.
तो जब तक आप उस धम्म प्रवाह में या श्रुतापन्न नहीं होते किसी भी बात का भरोसा नहीं है.
We're still quite dependent on good conditions.
अच्छे जो यानी अनुकूल परिस्थितियां है उस पर ही हम निर्भर होते हैं.
That's why I say it's quite significant that Bhante said that he's not bothered about rebirth.
इसलिए भंते कहते हैं कि मुझे पुनर्जन्म की अभी चिंता नहीं है.
He's completely confident he'll find the Dhamma again.
उन्हें पूरी तरह विश्वास है कि वे धम्म को दोबारा खोज ही लेंगे.
So that means that the Dhamma is so strong in him, that second force is so strong in him, it'll find a way out, however.
तो इसका अर्थ यह होता है कि जो दूसरे प्रकार का जो बल है वह इतना प्रबल है कि वो अपने मार्ग को ढूंढ लेगा.
Even if he's born in Makkah or in the middle of the Islamic state.
भले वो मक्का में या इस्लामिक राष्ट्रों के बीचों बीच पैदा क्यों ना हो,
He'll find a way.
वे अपना रास्ता ढूंढ लेंगे.
We certainly had, I saw one quite recently, a letter from a man in Riyadh, which is the capital of the Palestinian proto-state.
तो रियाद से
not Riyadh, sorry. What's it? Ramallah. Ramallah. No, that's in Saudi Arabia, but in Palestine. Rumala, yeah. Something like that, yeah.
Rumala se ya wahan se kahin se ek khat maine abhi dekha.
You know, the heart of the Palestinian uprising.
Jo jahan Palestinian ki aur jahan sangharsh ho raha hai bilkul uske kendra sthan se.
So writing saying, you know, help, I've come across the Dhamma. I want the Buddhism, but I can't tell anybody here.
उसने कहा कि मुझे धम्म चाहिए, मुझे बुद्ध चाहिए, लेकिन यहाँ मैं किसी को बोल भी नहीं सकता.
And just a little while after that, we had one from an Israeli, a Jewish Israeli, saying, "I've seen the Dhamma in Jerusalem, and I want contact."
और जेरुसलम से हमें खत आया कि यानी वहाँ उन्हें धम्म के बारे में पता चला और हमें संपर्क चाहिए.
So if nowadays if you have got sufficient sort of determination, sufficient inspiration, you'll find the Dhamma wherever you are.
और इसलिए पर्याप्त मात्रा में आपकी अगर कटिबद्धता है तो आपको धम्म मिलेगा या आप धम्म को ढूंढ लेंगे.
But I think the main thing is to, from what we've been talking about, is to recognize that this, our whole self is generated by self-clinging.
लेकिन इस बात को इस क्षण तक पहचानना जरूरी है कि जो कुछ भी अभी तैयार हुआ है हमारे बीच वो स्वासक्ति का ही कारण है.
It's associated with the desire to get free.
और यह इससे जुड़ा हुआ है कि वह प्रबल इच्छा मुक्तता की.
And in a certain sense, the two forces are actually one.
और एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोनों जो वो बल है वह एक ही है.
But that's another story which we won't go into now.
लेकिन वो दूसरी कहानी है, अभी मैं वो नहीं बताऊंगा.
You'll have to wait for my Trivia Nagarjuna's thesis.
I think I've understood what you said before on consciousness. I can't reconcile that with talk of people remembering the past life. Because remembering the past life seems to indicate Atman,
तो वो कह रहे कि जो पुनर्जन्म होता है, तो जब जन्म होता है तब वहां मनुष्य का संपर्क कैसे आता है?
I don't have an explanation. I can only tell you what tradition says. Yeah.
अब मेरे पास उसका विश्लेषण नहीं है. मैं केवल उतना बता सकता हूँ कि परंपराएं क्या बताती है.
Of course, even in this life, memory is mysterious.
इस जीवन की भी जो याददाश्त है, यह रहस्यमय है.
Although increasingly neuroscience is able to find out where memory is sort of located in the brain.
लेकिन जो न्यूरोसाइंस है वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि अपने मस्तिष्क में कहाँ याददाश्त के अंश होते हैं.
Or rather, should I say more accurately that what parts of the brain particular memories are associated with?
या अगर मैं अधिक विशिष्ट रूप से अगर कहूँ तो मस्तिष्क के कौन से भाग में कैसी याददाश्तें संग्रहित होती है.
So what carries the memory across different bodies, if you like? That's your question.
तो अलग अलग जो जीव है या जो बॉडीज है तो कौन सी याददाश्त वो ढोते हैं?
Well, I suppose that first of all we have to ask, is memory simply a byproduct of mental of physical states or not?
तो हमें यह देखना होगा कि क्या जो याद है यह शरीर में ही रूपांतरित होती है क्या?
That's what neuroscience tends to suggest.
यही न्यूरोसाइंस बताने की कोशिश करता है.
To be honest, it doesn't really satisfy one, does it? To think that those memories are somehow all wrapped up in a little piece of, tissue.
तो ऐसा कहना मुश्किल है कि सारी जो याददाश्त है वो छोटे से एक पुंज में बन गई हो.
So that already suggests that there's something sort of larger than the body that is the container of that memory.
तो ऐसी कोई तो भी बड़ी बात है अपने शरीर में जो उससे अधिक विशाल है, ज्यादा है.
And really beyond that, I'm not sure I can do anything more than speculate, and I'm not sure how useful that is.
और उससे अधिक मैं कुछ ज्यादा अंदाज नहीं बना सकता या वो कितना सही होगा या उपयुक्त होगा मुझे पता नहीं.
But perhaps the main thing is to get away from the materialist assumption that memory is a byproduct of brain states.
तो कम से कम भौतिकवाद का जो सिद्धांत है या भौतिकवादियों का जो मत है कि जो याद है वह आपका मस्तिष्क बनाती है, इससे तो भी हमने मुक्त होना चाहिए.
It is quite difficult because neuroscience now is extremely sophisticated.
यह बहुत कठिन है क्योंकि आजकल का जो न्यूरोसाइंस है वह काफी आधुनिक है.
And huge strides have been made in the last 20 years in neuroscience.
और न्यूरोसाइंस में से कई खोजें हुई हैं जो काफी सही है या आधुनिक है.
I was talking with your batchmate Sila Dasa about this, who's a neurologist.
आपके जो यानी बैचमेट थे सिले दासा जो न्यूरोलॉजिस्ट है उनके साथ में बात कर रहा था.
एंड ही वाज सेइंग दैट एवरी ईयर ह्यूज डेवलपमेंट्स आर टेकिंग प्लेस एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर एवरीबॉडी टू कीप अप.
और वो कह रहे कि हर साल इतने यानी तादाद में खोजें हो रही है कि सबका यानी उसको जानना मुश्किल है.
एंड सो मेनी पीपल बिलीव दिस इज कॉन्शियसनेस.
इसलिए काफी लोग ये मान लेते हैं कि मस्तिष्क जो है वह कॉन्शियसनेस है या चेतना है.
बट इट्स सो ऑब्वियसली नॉट.
लेकिन यह स्वाभाविक है या सहज है इसे समझना कि यह नहीं है.
इट मे बी एसोसिएटेड विद दिस, इट मे बी चैनल्ड थ्रू दिस.
हो सकता है इसे यह जुड़ी हो, उससे यह चलित हो.
बट आई थिंक वी शुडंट अलाउ आवरसेल्व्स टू फॉल इनटू दैट मटेरियलिस्ट साइंटिस्टिक अप्रोच.
यह जो विज्ञानवाद और भौतिकवाद का जो वाद है या विचार है इसके गिरफ्त में पकड़ में हम नहीं आने चाहिए.
So perhaps another thing I can say is what is described as the method for developing memory of past lives.
मैं क्या कह सकता हूँ कि पूर्व जन्म की क्या पद्धतियाँ है उसे याद करने की.
What happens is apparently according to the texts you start remembering yesterday.
क्या होता है जैसे अपने को शास्त्र यानी ग्रंथ बताता है कल की बात हम याद करने की कोशिश करते हैं
and you try to get as sort of a vivid experience as you can of yesterday
और कल की जितनी अच्छी याद हमें आए उतनी हम कोशिश करते हैं
then the day before
और फिर उसके पहले का दिन
and then the day before that
फिर उसके पहले का दिन
so you bring your memory further and further back in as living a way as you can
तो जीवित होने के नाते हम जितना पीछे याद कर सकते हैं जितना पहले की चीज याद कर सकते हैं उतनी हम कोशिश करते हैं
एंड यू अनकवर योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन दिस लाइफ
और जो हमारी पहले की जो यादें हैं उसको हम उजागर करते खुली करते
एंड यू गेट टू अ पॉइंट वेयर वेल यू आर बीइंग बोर्न
और वहां पे एक ऐसा क्षण आता है जहां पे हमारा जन्म होता है
एंड देन यू सॉर्ट ऑफ पुश बैक
और फिर आप पीछे जाते हैं
And then you're into another life.
और फिर आप दूसरे जीवन में जाते हैं.
So what that's suggesting is that the even though that continuity is broken, it's possible to recover it.
तो क्या होता है कि भले ही वो निरंतरता टूट गई हो, यह possible to
recover it.
उसे वापस लाना मुमकिन है.
So perhaps what you could say is that the memory is somehow carried by the continuity. Of karma and self-identity.
तो क्या होता है कि जो यादें हैं वह कर्म और स्व की पहचान इसकी निरंतरता होती है.
But exactly how, I don't know even how to begin saying.
और वाकई में यह कैसे होता है मुझे पता नहीं है कैसे इसकी मैं शुरुआत भी करूं बताना.
But the continuity is the carrier of the memory somehow.
लेकिन जो साथ निरंतरता जो है वह एक उसका यानी माध्यम है. निरंतर होने का
बट एग्जैक्टली हाउ वी वुड हैव टू इन्वेंट अ थ्योरी एंड वी डोंट हैव इनफ एविडेंस टू डू दैट
अब हमें सिद्धांत खोजना होगा और हमें पता नहीं उसके तथ्य क्या होंगे पहचान और जो सातत्यता है उसमें फर्क क्या है उसके बारे में आप थोड़ा कुछ कह सकते हैं क्या
वेल द थ्योरी ऑफ आइडेंटिटी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट समथिंग इज आइडेंटिकल टू इटसेल्फ एंड डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स
तो पहचान का जो सिद्धांत है वो इसके ऊपर आधारित है कि जो अपने आप के ही समान है यह पहली बात और दूसरे से भिन्न है
सो I am me and I'm not Maitreya Nagarjuna.
तो जैसे मैं हूँ और मैं मैत्रेय नागार्जुन नहीं हूँ.
Fortunately or unfortunately. so identity as an idea is simply the distinction of something from everything else.
तो पहचान एक ऐसी बात है जो अपने आप से समान है औरों से जो है वह भिन्न है
And in ordinary speech, we use the idea of identity to keep on referring to the same thing.
और हमारे दैनंदिन जीवन के भाषाओं में या अनुभवों में हम चीजों को पहचानने से इसका इस्तेमाल इस संकल्पना का इस्तेमाल करते हैं
So, I say, you know, Suchandra, when I saw you at Bhaja, you know, you were like this, now I'm seeing you now, and you're like this.
तो मैं कहता हूँ कि सुचंद्रा जब मैंने आपको भाजा में देखा था तब आप वैसे थे और अब मैं आपको यहाँ देख रहा हूँ आप ऐसे हैं.
I'm identifying my memory from the past with my experience now.
तो मैं क्या कर रहा हूँ संदर्भ दे रहा हूँ मेरे गत यादों का अब जो मैं चीजें पहचान रहा हूँ उसके साथ
And I'm thinking that's the same thing.
और मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि वो एक ही बात है
For general purposes, no problem.
अब सर्वसामान्य इस्तेमाल के लिए कोई समस्या नहीं.
That enables us to speak to each other.
और यह हमें एक दूसरे से बात करने के लिए काबिल बनाता है.
But actually, Suchandra, when I saw him in Bhaja, was different in certain respects from Suchandra as I experience him now.
लेकिन जो सुचंद्र मैं अभी अनुभव कर रहा हूँ और जिस सुचंद्र को मैंने भाजा में देखा था वो दोनों अलग है.
But of course, there's a connection between those two.
लेकिन निश्चित ही वहां दो चीजों में कुछ संबंध है.
But they're not identical.
लेकिन वो समान नहीं है.
Fortunately, we're able to work in those terms, rough and ready terms.
सौभाग्य से हम कम से कम इन दोनों जो बातें हैं धारणाएं हैं उसमें काम कर सकते हैं.
Otherwise, every time I met with what I used to call Suchendra, I'd have to introduce myself again.
नहीं तो क्या होगा, सुचेंद्र को बार बार मुझे अपना परिचय देना होगा.
Hello, who are you? You look like somebody I used to know.
तो अगर वो निरंतरता नहीं रहेगी तो मैं बोलूंगा अरे आपके जैसा कोई मुझे पहले दिखा था या मैं जिसको मिला था उसके जैसे आप दिख रहे हैं.
So we use the idea of identity as a way of handling our experience.
तो पहचान की जो संकल्पना है अपने अनुभवों को उसको यानी हाताड़ने के लिए क्या कहते इस्तेमाल करने के लिए हम वह संकल्पना का इस्तेमाल करते
हैं. And it does for general purposes.
और सामान्य रूप में यह इस्तेमाल होता है.
But it's not literally true.
लेकिन शब्दशः यह सत्य नहीं है.
Nothing is the same twice.
कोई भी बात दोबारा समान नहीं हो सकती.
And nothing is the same as itself in another moment.
और कोई भी वह वैसा ही टीका नहीं है दूसरे क्षण में.
But there's a continuity between them.
लेकिन उसमें सातत्यता है.
The Suchendra that is here has a continuity with the Suchendra that was at Bhaja.
तो सुचंद्र जो यहाँ पर है वह जो भाजा में जो सुचंद्र थे उसकी सातत्यता है.
So continuity is the flow of conditions that link two moments. The flow of conditions that link two moments.
तो यह जो दो प्रवाह है जो एक दूसरे को जोड़ती है वह सातत्यता है.
And you know, moments of a particular defined part of reality.
एक विशिष्ट सत्यता का हिस्सा या भाग.
So they're connected by a continuing stream of conditions.
तो वह जो परिस्थितियों का जो प्रवाह या पुंज जो चलता आ रहा है उसकी निरंतरता है.
You know, I always give the example of a river, don't I?
अक्सर मैं नदी का उदाहरण देता हूँ.
When I'm at Bhaja, I always say, well, there's the Indriani River.
अक्सर मैं जब भाजा में होता हूँ तो मैं कहता हूँ वहाँ इंद्रियानी नदी थी.
You know, when we cross the Indriani to go from Malauli to Bhaja,
भाजा से यानी मड़ौली से भाजा आने के लिए इंद्रायणी जो नदी है उसे हमें पार करना होता है.
You always say, oh, there's the Indriani.
तो हम वहाँ कहते हैं ये इंद्रायणी नदी है.
But of course, last time I was here, it was full of water.
लेकिन पिछली बार जब मैं था वो पूरे पानी से भरी थी.
All that water is gone.
अब वो सारा पानी जा चुका होता है.
Now there's just a little bit left in the bottom of the bed.
तो अब उसके सतह में थोड़ा सा जो डबका जिसे कहते हैं वो थोड़ा सा पानी बचा होता है.
So I use the idea of identity to name the river.
तो मैं वो पहचान की जो संकल्पना है उसका इस्तेमाल करता हूँ उस नदी को कहने के लिए.
But literally, it's completely different thing.
लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो यह पूरी तरह अलग बात है.
I can trace a continuity of conditions from the previous experience of it to now.
तो मैं पहले अनुभव से जो मेरी निरंतरता सातत्यता जो आ रही है उसके साथ मैं उसे जोड़ सकता हूँ.
Yeah, is that clear enough?
For me, I'm taking as a particle and wave. The difference between particle and wave.
Yes, that would be quite a good way of putting it. Although, even a particle is, of course, merely waves, ultimately.
Yeah, I have to.
मुझे ये पूछना था कि बहुत बार मैं जब सुबुद्धि भंते के बारे में जब बताते हैं कि उन्होंने पूछा कि भंते आप पुनर्जन्म लेंगे क्या, तो बहुत बार जैसा भंते कहते हैं कि इस जीवन को मैं डिसगस्टिंग महसूस करता हूँ. मतलब जैसे आप विभत्स ये शब्द यूज करते हैं या घृणास्पद आप कहते हैं, तो मुझे लग रहा था कि जब हम लोग भव तृष्णा और विभव तृष्णा की बात करते हैं तो वहाँ पे भी विभत्स शब्दों का या डिस्गस्टिंग शब्दों का हम लोग उपयोग करते हैं, घृणास्पद है, तो ये लाइकिंग और डिसलाइकिंग के बीच में आता है। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर भंते इस जीवन को अगर घृणास्पद करते कि नहीं चाहिए, तो मेरा माइंड ये कहता है कि ये डिसलाइकिंग है, मतलब विभो तृष्णा है। तो मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस तरह से, तो मुझे
प्रश्न समझने का प्रयत्न करता हूँ। When Bhante says that this world is disgusting, is it to do with Vibhav Trishna? That's what you're asking.
Yeah.
Is it to do with Vibhav Trishna? That's the question.
Yes, it's a good question.
अच्छा सवाल है।
I take it that that's not what he means.
लेकिन मुझे ऐसे लगता है वैसा उनका संदर्भ नहीं है।
It's as I mentioned, I said to him, do you mean Nibida?
मैंने उनको पूछा था कि क्या आप निबिदा की बात कर रहे हैं क्या?
And well, he said, you know, maybe something like that.
उन्होंने कहा शायद ऐसी कोई बात।
I think he didn't want to sort of me to translate what he was saying into a system, as it were. He was giving a personal impression.
तो वो कोई ऐसी कोई सैद्धांतिक बात नहीं कर रहे थे, वो अपने भावनाओं की या अपने वैयक्तिक बात बता रहे थे।
But you know, Nibida is not Vibhava Trishna.
लेकिन निबिदा जो है वह विभाव तृष्णा नहीं है।
It's when you've been attached to something and you no longer are, to begin with, you feel some rejection of it.
तो अगर किसी चीजों से आसक्त नहीं है और फिर आप अगर चीजों को पहचानते हैं या उसे देखते हैं, तो फिर उसे आप छोड़ने की कोशिश करते हैं।
I used to smoke cigarettes.
जैसे मैं सिगरेट पीता था।
A long time ago.
बहुत पहले।
Honestly. Very long time ago. A previous life. The continuity of cigarettes. Yeah. I remember when I gave up cigarettes, to begin with, there's a strong longing for them.
तो जब मैंने सिगरेट छोड़ी तो मुझे बहुत उसकी इच्छा होती थी।
And I used to dream of cigarette smoking.
और मैं सपने आते थे मैं सिगरेट पी रहा हूँ इसके।
It's physically addictive.
क्योंकि मैं शारीरिक रूप से उसका क्या होते हावी नहीं आदि हो गया था।
And they're yes, also psychologically addictive.
और मैं मानसिक रूप से उसका आदि हो गया था।
And I used to have to fight against that strong attraction.
और वो जो प्रबल आकर्षण है उसके विरोध में मुझे यानी संघर्ष करना पड़ता था।
I remember a point came in my giving it up.
लेकिन एक बिंदु आया जहाँ मैंने यह चीजें छोड़ दी।
I just found the smell, the sight, the thought of a cigarette disgusting.
फिर एक ऐसा बात आई कि इवन उसकी खुशबू भी आती थी और उसका विचार भी आता था, वह मुझे घृणास्पद या विभत्स लगता था। विभत्स सौंदर्यकारी शब्द।
It wasn't just that I didn't want it.
तो ऐसा नहीं कि मुझे नहीं चाहिए था, मैं वाकई में चाहता था कि मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए।
And you know, now I don't like the smell of cigarettes, but I'm not bothered by it.
अभी मुझे उसका जो यानी जो बास आती है वो अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं उसको यानी सहन कर लेता हूँ।
Actually, some kinds of tobacco, particularly pipe tobacco, can smell quite nice.
लेकिन कुछ जो तंबाकू है उसकी खुशबू अच्छी भी आती है।
But yeah, I don't feel the same disgust.
लेकिन वैसी घृणा अभी नहीं आती।
So I think the disgust is as you let go fully.
तो जो घृणा है उसे हम पूरी तरह त्याग देते हैं।
Now, it's not for me to say what Bhante meant, but maybe this is something like it.
तो ऐसा नहीं है यही भंते ने कहा, लेकिन इस तरीके की कोई बात उन्होंने कही।
Because don't forget, Nibida is followed by Vairagya.
क्योंकि निबिदा के बाद वैराग्य है।
Vairagya is a state where it's not bothered.
वैराग्य एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे हम यानी किसी भी चीज से विचलित नहीं होते।
And I remember, going to a big furniture store in Birmingham with Sangadeva.
Sangadeva के साथ में Birmingham में एक बहुत बड़े यानि टेबल कुर्सी जो है जो फर्नीचर बिकता है उस दुकान में गया था।
IKEA. Which is very famous in Western Europe. I think there's one in Bombay now. Yeah.
बॉम्बे में एक है लेकिन ये यूरोप में काफी मशहूर है।
Very cheap, very good. Well, at that level, good furniture.
सस्ता होता है और बहुत अच्छा होता है।
And these big shops full of people.
और बड़े बड़े यानी दुकानें हैं और लोगों से भरे होते हैं.
एंड पीपल जस्ट वॉन्डरिंग अराउंड लुकिंग वांट वांट वांट.
लोग जाते हैं और उनको ये चाहिए वो चाहिए ऐसा सोचते हैं.
प्रेतलोक का
वो प्रेत लोग.
एंड आई हैड टू बाय सम फर्नीचर फॉर माय प्लेस.
मेरे जगह के लिए कुछ मुझे यानी फर्नीचर खरीदना था.
सो संगदेवा वाज वॉन्डरिंग अराउंड वाज कमिंग अराउंड विद मी टू हेल्प मी.
तो संगदेवा मेरे साथ आ रहे थे मुझे मदद के लिए.
एंड आई लुक्ड हिम एट वन पॉइंट एंड आई सॉ ही हैड अ बिग हैप्पी स्माइल ऑन हिज फेस.
और मैंने उनको देखा और वो बड़े यानी खुश होकर हंस रहे थे.
सो आई थॉट ओह संगदेवा इज एंजॉयिंग दिस ही रियली लाइक्स ऑल दीस थिंग्स.
तो मुझे ऐसे लगा अरे वाह संगदेव को यह सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही है उनको मजा आ रहा है.
सो आई सेड ओह यू लुक वेरी हैप्पी संगदेवा यू एंजॉयिंग इट.
तो मैंने उनको बोला संगदेवा आप बहुत खुश है यह चीजें आपको बहुत अच्छी लग रही है.
सो या आई एम रियली एंजॉयिंग इट.
तो वो कह रहे हाँ वाकई में बहुत खुश हूँ.
He said, I realize I don't want any of this stuff.
उन्होंने कहा कि मैं इस बात को जाना कि यहाँ की कोई भी चीज मुझे नहीं चाहिए.
And I'm enjoying the fact I don't want it.
मैं उस बात का आनंद ले रहा हूँ कि मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए.
That's vairagya.
वो वैराग्य है.
Nibbida is where you're walking around, you think, oh, I want that. No, I don't.
Nibbida वो है कि आप जाते नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए.
Horrible stuff.
यह बहुत बहुत बेकार है.
वैराग्य इज जस्ट आई डोंट वांट इट.
वैराग्य ऐसी बात है जो मुझे नहीं चाहिए.
सो नाउ आई हेसिटेट टू अप्लाई एन एनालिसिस टू व्हाट बंते सेड.
तो मुझे यह विश्लेषण जो बंते ने कहा उसमें यानी लगाना है.
बट सो परहैप्स दिस सजेस्ट समथिंग ऑफ व्हाट ही वाज मीनिंग. या
लेकिन शायद यह उसका दर्शाता है कि क्या वो बताना चाहते उसका अर्थ क्या है.
परहैप्स आल्सो वन कुड अप्रोच इट थ्रू व्हाट बंते हिमसेल्फ सेज अबाउट असुभा.
शायद इसके बाद इस साथ भी उसका संबंध है. क्या बनते बताते हैं अशुभ के बारे में.
वेल ही क्वोट्स द बुद्धा बिकॉज़ अ वांडरर फ्रॉम अनदर सेक्ट कम्स टू हिम एंड सेज यू आर टीचिंग रॉन्गली.
तो एक यात्री या कोई संत दूसरे पंथ से आता है और उनको बताता है कि आपकी जो शिक्षाएं हैं आप गलत पढ़ा रहे
हैं. दिस मैन सेज दैट व्हाट यू टीच इज दैट व्हेन यू गेन निर्वाण व्हेन यू सी थिंग्स ट्रूली यू सी देम एज अगली.
वो बताते हैं कि आप ऐसा पाठ पढ़ा रहे हैं कि जब आप निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं या जब आप निर्वाण में रहते हैं तब जब आप चीजों की सत्यता को देखते हैं वह कुरूप है.
But the Buddha says, no, that's not what I say.
Buddha कहते नहीं ऐसा मैं नहीं कहता.
He says, what I say is that when you gain nirvana, then you know what beauty is.
मैं ऐसे कहता हूँ कि वाकई में जब आपको निर्वाण की स्थिति प्राप्त होती है तब आपको पता चलता है कि वाकई में सुंदर क्या है.
But still, nonetheless, of course, in relation to real beauty, the worldly beauties, the sensuous beauties are relatively ugly.
तो निर्वाण की जो सुंदरता होती है उसके तुलना में अगर देखा जाए तो सांसारिक और इंद्रिय जन्य जो सुंदरताएं है वह कुरूप ही है.
So maybe again something of that Bante meant.
तो शायद वह बंते का अर्थ था.
But the main point is that what we find so attractive, even if we're disappointed by it, he says he doesn't.
तो वो ऐसा कहते हैं कि भले ही हम काफी निराश हो जाते हैं खिन्न हो जाता है चीजों से उसके प्रति भंते खिन्न नहीं है. You said that we reborn because of self-clinging, but there is bodhicitta. So is bodhicitta is self-clinging?
Well, no, it isn't, of course.
नहीं निश्चित ही नहीं.
It's as if you do attach to an identity.
जैसे आप किसी पहचान से आसक्त होते हैं.
You do attach to a particular set of five skandhas.
पांच जो स्कंद है उससे आप आसक्त होते हैं.
In other words, you sort of gather them together.
और आप उनको इकट्ठा करते हैं.
But your motive is compassion.
लेकिन आपका जो उद्देश्य है वह करुणा होती
है. The emotion, the desire that brings them together is compassion.
तो जो भी चीजें इकट्ठा लाती है वो करुणा लाती है.
Something needs to organize a particular set of skandhas to form a body.
तो शरीर बनाने के लिए कुछ स्कंदों को इकट्ठा तो करना पड़ेगा.
Usually it's clinging, self-clinging.
अक्सर यह स्वासक्ति होती
है. But in the case of a bodhisattva, it's a desire for the welfare of others.
लेकिन बोधिसत्व के उदाहरण में यह औरों के कल्याण होता है.
So it's not kama trishna.
यह काम तृष्णा नहीं है.
If you like, it's dhamma trishna.
आप ऐसा कह सकते हैं यह धम्म तृष्णा है.
इट्स नॉट काम छंद, इट्स धम्म छंद.
यह काम छंद नहीं है, धम्म छंद है.
और रादर इट्स करुणा छंद.
आप ऐसा कह सकते हैं यह करुणा छंद है.
बिकॉज करुणा इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स, अ काइंड ऑफ इमोशनल एनर्जी.
क्योंकि करुणा भी एक भावनिक ऊर्जा है, शक्ति है.
दैट पुल्स थिंग्स टुगेदर,
जो चीजों को इकट्ठा लाती है.
You can see that on your own lower level.
हम हमारे अपने निम्न स्तर पर ही थे इसे देखते हैं.
Sometimes you do things because you think it's a good thing to do.
कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि यह अच्छी बात है करना.
You think it's good to help in that way.
अच्छी बात है इस तरीके से मदद करना.
You don't particularly want to from your own point of view.
आपके अपने दृष्टिकोण से चाहिए ऐसा नहीं होता है.
But you want to be helpful. You want to do your duty.
लेकिन आप अपना कर्तव्य करना चाहते हैं.
So yes, what brings you into that situation is at least a little bit beyond self-clinging.
तो क्या आपको उस परिस्थिति में कुछ चीजें लाती है जो है स्वासक्ति के जो परे है.
And that's why I think it's so important for us to think of ourselves as serving the Dhamma.
इसलिए हम जब अपने आप को जब सोचते हैं तो धम्म की हम सेवा रत है ऐसा सोचना चाहिए.
And serving the Dhamma through the order.
और संघ के द्वारा हम धम्म की सेवा करते हैं.
So that we increasingly try to have our lives directed by the Dhamma rather than by self.
तो अधिक से अधिक हमारा जो जीवन है वह धम्म के द्वारा निर्देशित हो, ना कि स्वासक्ति से निर्देशित हो.
I went into this on the previous retreat.
पहले शिविर में मैं गया.
You know, the Buddha under the Ajapala Nigrodha saying that he would serve the Dhamma.
अजपाल निग्रोध पेड़ के तले बुद्ध ने कहा कि मैं धम्म की सेवा करूंगा.
Because he's seen through the house builder.
क्योंकि उन्होंने गृहकार को देख लिया था.
No self-clinging to keep him going.
कोई भी स्वासक्ति की बात नहीं थी जो उन्हें चलित कर रही थी, चला रही थी.
So how is he going to live without anything motivating him, as it were?
तो कैसे कौन सी चीजें हैं जो उनको चलाती थी?
So he puts the Dhamma at the center of himself.
तो उन्होंने उस गृह कारक के बजाय धम्म को रखा.
So that all these skandhas are now at the service of the Dhamma.
तो यह सारे जो स्कंद है यह धम्म की सेवा में.
Whereas previously they were at the service of self.
और पहले वह स्व के सेवा में थे.
So yes, the bodhisattva puts that stream of continuity at the service of other beings.
तो औरों की सेवा में जो बोधिसत्व है अपने आप को रखता है स्व की जगह.
In the service of the Dhamma.
धम्म की सेवा में.
So I think this is quite an important point for us.
तो हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है.
We're trying to, yes, overcome self-clinging, but something has to replace that.
लेकिन हम स्वासक्ति को बदलने की या परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई तो भी बात परिवर्तित होनी चाहिए, कुछ बदलनी चाहिए, तब्दील होनी चाहिए.
Otherwise, just lie down and die.
नहीं तो फिर क्या है, सोना और मर जाना.
Just stop eating.
खाना रोक दीजिए.
That's what the Jains do, isn't it?
यही जैन लोग करते हैं.
But what the Buddhist does is put all that, all this, at the service of the Dhamma.
तो यह हम सब लोग धम्म की सेवा में रखते हैं.
But yeah, the Jains believe that you achieve kaivalya, isolation, by just stopping eating eventually.
तो जैन लोग ऐसा विश्वास रखते हैं कि आप कैवल्य को हासिल करते हैं खाना छोड़कर.
That's nirvana for them.
उनके लिए वही निर्वाण है.
But the Buddhist doesn't think of it like that.
लेकिन बुद्ध उसको ऐसा नहीं सोचते.
They think in terms of putting your whole psychophysical organism at the service of the Dhamma, at the service of other people.
बुद्ध ऐसा सोचते हैं कि यह जो सारा जो हमारी शारीरिक और मानसिक काया है उसे हम औरों के कल्याण या सेवा में रखते हैं।
And if you can, if you believe in the bodhisattva path, you take the bodhisattva vow, which acts as the force to bring that about again in another life.
अगर आप बोधिसत्व प्रतिज्ञा लेते हैं तो फिर वह उस परिपेक्ष में आती है, उस बल में आती है।
सुस्पष्ट है? You know what to do now?
Duty.
Mm. Jimidari. No.
Kartavya. Kartavya.
Kartavya.
Duty and service. Sirf kartavya.
मैं यानी क्या पूछ रहे कर्तव्य को कर्तव्य को आप कैसे बताएंगे
कर्तव्य को कैसे मतलब अपने कॉन्टेक्स्ट में कैसे रखेंगे एक बार कास्ट में ड्यूटी आती है लेकिन एज अ बुद्धिस्ट कॉन्टेक्स्ट हाउ
Well, I think the first thing is, of course, you need to be go on.
He's asking how to define duty.
Are you speaking to me or to everybody?
No, I'm telling him.
Oh, sorry.
In terms of caste, there are certain duties to perform.
I see.
So you are bound to certain duties. Mm. How will you define in Buddhist terms? That's what he's asking.
Your dhamma. Mm. Dharma, rather.
That's your dharma.
Yeah. Yes, well, the first thing is, of course, you need to get out of any idea of... doing something simply because it's conventionally required of you.
तो हमें कुछ बातें इसलिए भी करनी होती है क्योंकि औपचारिक तौर से वह जरूरी होती है उनकी आवश्यकता होती है.
Whether it's by notions of caste or even shallow notions of what it is to be a human being or a man.
भले यह जाति के आधार पर हो या आप इंसान हैं इसके आधार पर हो.
So what we mean here is that you are subordinating your own interests to something that is higher.
तो आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने रुचियों को छोड़ रहे हैं अपने स्वार्थ को छोड़ देते हैं उसके लिए जो थोड़ा उच्च है उस चीज के लिए.
You do something because you believe it's an important and good thing to do.
क्योंकि आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप यह जानते हैं कि यह महत्वपूर्ण है और इसे करना जरूरी है.
No. Just because in a shallow way you want to do it.
केवल निकृष्टता से नहीं या कम यानी नीचता से नहीं कि मैं केवल करना चाहता हूँ इसलिए.
Sometimes on this long tour, both Maitri Veer and I have felt like staying in bed.
तो अक्सर क्या होता है ऐसे लंबे यात्रा जब हम करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हम बस दोनों पड़े रहने चाहिए.
It's so tired. You've done so much. You just feel like. Staying in bed.
इतना कुछ काम हो जाता है और इतने थक जाते हैं कि ऐसे लगता है कि बस अब पड़े रहो.
People are waiting.
लेकिन लोग यहाँ राह देखते रहते हैं.
People have come for some event.
किसी न किसी शिविर या घटना के लिए लोग आए हुए होते हैं.
So it's your duty to be there.
तो अब आपका कर्तव्य होता है कि ये सब करना है आपको जाना है.
So you just set aside your own immediate shallow interests and you go and do what needs to be done.
तो आपके जो अपने संकुचित जो यानी रुचियां होती है आप उन्हें छोड़ देते हैं और जो उस वक्त करना जरूरी होता है बस वो आप कर लेते हैं.
Of course you need to be careful because if you get overtired then you can't do your duty properly.
इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए अगर आप बहुत ही थक गए तो आप अपना कर्तव्य भी ठीक से नहीं कर पाएंगे.
But in a broad way I think the notion of duty is valuable in the Dhamma context.
लेकिन यानी विशाल परिपेक्ष में देखा जाए तो धम्म के परिपेक्ष में जो कर्तव्य की धारणा है वह महत्वपूर्ण है.
There's something that needs to be done, which is not what you immediately and narrowly want to do.
कोई तो भी ऐसी बात करना आवश्यक होता है जो अपने स्वार्थ से या अपनी रुचि से बढ़कर होती है.
I've given the example sometimes of when I realized that Suvadra couldn't come back to India.
मैं एक बात का उदाहरण अक्सर देता हूँ कि जब सुवज्र ने यह निर्णय लिया कि वो भारत में अभी वापस नहीं आ सकते.
I remember thinking, oh, no.
मैंने सोचा ऐसे सोचा.
Because it meant that I would have to step back into the ordination.
इसका मतलब यह हुआ कि फिर मुझे वो जो दीक्षा चमू है उसमें जाके काम करना है.
I'd done that some years ago.
कुछ साल पहले मैं वो कर चुका था.
I'd handed it back to Suvadra. I handed it on to Suvadra fully.
और मैंने पूरी तरह सुवज्र को सौंप दिया था.
And I didn't want to go and do that.
मैं वो जाके करना नहीं चाहता था.
I liked what I was doing with Maitri Veer in North India and all that. Yeah.
मुझे बहुत अच्छा लगता था जो मैं मैत्रूर के साथ उत्तर भारत में काम करता था.
But, you know, it needed to be done.
लेकिन अब उसे करने की आवश्यकता थी.
At that point, there was nobody else who could do it.
उस वक्त कोई कुछ कर नहीं पा रहा था.
So you think, okay, I must do it.
तो मुझे लगा ठीक है मुझे यह करना चाहिए.
And once you sort of decide that, you do it joyfully and happily.
और जब आप इसे यानी निर्णय लेते हैं तो आप उसे आनंद से करते हैं.
But to begin with, there's a thought in one's head, no.
लेकिन शुरुआत में ऐसा विचार आता है कि नहीं मैं नहीं करूंगा.
I don't want to do that.
मैं यह करना नहीं चाहता.
But you can see, it has to be done.
लेकिन आप देखते हैं कि इसे करना आवश्यक होता है.
That was my duty.
यह मेरा कर्तव्य था.
And I'm sure everybody knows moments like that.
और मुझे पता है हर किसी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं.
I'm not trying to say I'm special in any way. Yeah.
मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं विशेष हूँ औरों से.
And I'm certainly not trying to say that it's horrible being in the men's ordination team.
और मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि बहुत भयानक है कि मैं यानी पुरुष दीक्षा चमू में काम कर रहा हूँ.
And actually, the men's ordination team doesn't need me anymore.
और अभी तो वो जो चमू है उनको मेरी जरूरत भी नहीं है.
Because I've, with my friends, have done my duty.
क्योंकि मेरे दोस्तों के साथ मैंने मेरा काम किया है.
So that's what I mean.
तो यह मेरा अर्थ है.
Because your own desires are fairly immediate.
तो आपकी अपनी जो निजी इच्छाएं होती है वह तुरंत होती है.
But you put them aside for something that's bigger and more worthwhile.
लेकिन आप उसे बाजू में रखते हैं उसके लिए जो उससे अधिक विशाल महान है योग्य है.
And actually that gives you a better life.
और वो आपको अच्छा जीवन देता है.
That's one of the things that scientific research shows brings happiness.
वही एक यानी संशोधन वैज्ञानिक संशोधन भी बताता है कि यही बातें जो है हमें खुशी लाती है.
I've mentioned this a number of times, but research done all over the world, but at the London School of Economics, shows that a key factor in happiness is that you're serving something bigger than yourself.
मैंने कई बार यह उदाहरण बताया दुनिया के संशोधनों में कि लंदन बुद्धिस्ट सेंटर जो है
लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स
जो है वहाँ पे यह संशोधन हुआ है कि जब तक आप उच्च मूल्यों को सर्विस नहीं करते उसकी सेवा नहीं करते वही बातें आपको खुशी देती है तब तक हमें खुशी नहीं मिलती.
But to begin with, you do feel some reluctance, maybe sometimes.
शुरुआत करने के लिए आपको एक टकराव महसूस होता है.
And that's when you say to yourself, well, that's my duty.
और तभी वो क्षण है जब आप कहते हैं यह मेरा कर्तव्य है.
And that's a little victory over self-clinging.
और यह थोड़ी जीत होती है आपके स्वासक्ति के ऊपर.
And of course, you must be sensible about it.
इसके बारे में हमने यानी संवेदनशील रहना चाहिए.
But I think if we all did our duty fully, the movement would be very much more effective.
तो अगर हम सब लोगों ने हमारे कर्तव्य पूरी तरह किए तो हम काफी प्रभावी होंगे.
And we would be a lot happier.
और हम काफी सुखी रहेंगे.
And a lot more united.
और हम अधिक इकट्ठा रहेंगे.
So I think it's a useful and important notion.
तो मुझे लगता है यह बहुत महत्वपूर्ण धारणा है.
But it doesn't mean something you do reluctantly because you've got to.
लेकिन यह ऐसी बात नहीं है कि आपको बस आपके पल्ले पड़ी है और आपको करना ही है.
And in India is cursed by that sense of a reluctant obligation.
लेकिन भारत को यह अभिशाप मिला है इस तरीके के नकार कर्तव्य को नकारने की.
You know, you see people sweeping. They really don't want to be doing it, so they hardly stir the dust.
तो लोग इसलिए साफ करते हैं कि उनको पूरे थक जाते हैं और शायद ही वह यानी कुछ साफ सफाई कर पाते हैं.
Because it's just what they got to do.
क्योंकि वही उनको मिला है काम करने के लिए.
There's no heart in it.
वहाँ पे दिल नहीं होता है.
I remember my very first job was as a sweeper on a road.
मेरा सबसे पहला जो काम था मैं रोड पे सफाई का काम कर रहा था.
At a motorway service station.
जो हाईवे होता है ना इंडिया में जिसे हाईवे कहते हैं उसको मोटरवे कहते हैं उधर उसके सर्विस स्टेशन पे.
And so I set out in the morning. I was given my broom.
तो मैं सुबह उठता था मुझे झाड़ू पकड़ा जाता था.
I was given a brown coat.
मुझे वो कोट दिया जाता था.
Told go and sweep that car park.
और मुझे बोलते थे कि बस वो जगह साफ करो.
So off I went.
मैं जाता था और उसे साफ करता था.
And I soon had the car park clean.
और तुरंत ही वो जो जगह है उसको मैं साफ कर लेता था.
And I saw these three old men walking towards me with their brooms.
और तीन फिर बूढ़े आदमी आते थे अपने झाड़ू के साथ.
They walked very slowly towards me.
धीरे धीरे वो मेरे ओर आते थे.
रिलैक्स रिलैक्स.
मुझे वो कहते थे तू थोड़ा आराम से ले.
यू नो इफ यू गो ऑन लाइक दैट यू डू द होल जॉब इन वन आवर.
अगर आप ऐसा करेंगे तो एक घंटे में पूरा काम खत्म करेंगे.
जस्ट लेट इट लास्ट द होल डे.
उसको दिन तक चलने दीजिए.
थ्री पीपल हैव गॉट जॉब फॉर द होल डे एंड यू डू इट इन वन आवर.
तो तीन लोगों को एक दिन के लिए वह काम मिला है और आप अकेला एक घंटे में कर रहे हो.
रिलैक्स रिलैक्स.
थोड़ा आराम से कर.
दिस वॉज द ब्रिटिश कास्ट सिस्टम एट वर्क.
तो यह अंग्रेजी जाति व्यवस्था है.
Yeah, you know that there's a class system where you know the lower the working classes work reluctantly. They don't want to work.
तो जो working class है वो काम नहीं करना चाहता है.
I was born into a family with the military. Yeah.
मैं वहाँ पैदा हुआ जहाँ पे सेना थी.
And I thought of doing my duty.
और मुझे ऐसे लगता था कि मुझे मेरा कर्तव्य करना है.
So I had to learn not to do my duty.
मुझे यह सीखना पड़ा कि मुझे मेरा कर्तव्य करना नहीं है.
But yes, that's the curse of India.
तो यह भारत का अभिशाप है.
You see a civil servant, you know, he hardly can lift his arm to sign his name at the bottom of the piece of paper.
आपने देखा अधिकारी मुश्किल से हाथ उठाते हैं वो अपनी सही मारने के लिए.
If he could get his peon to hold his arm, he would.
अगर उसका चपरासी अगर आता है और उसका हाथ छिलाता है तो वो भी वो करेगा.
The old Indian way is like that.
तो पुरानी जो भारतीय परिस्थिति थी वह वैसी थी.
It even infects us in our order.
और हमारे संघ में भी कुछ हद तक यह है.
So I don't mean duty in that sense.
तो उस दृष्टिकोण से मैं कर्तव्य नहीं कहता.
Duty in that sense is something you have to do for reasons you don't understand and that you don't want to do.
तो कर्तव्य वह है उन कारणों के लिए हम करते हैं भले ही वो हमें समझ में नहीं आए या हम करने के लिए उसकी तकरार करें या नकारते हैं.
But you just have to.
लेकिन आपको यह करना होता है.
मैं क्या कर सकता हूँ. That's my duty. Anyway, I think that's probably enough for now, although there's plenty more we could talk about.
बहुत सारी चीजें बात कर सकते हैं लेकिन अभी यह मुझे लगता है पर्याप्त है.
But I think very, very useful, this last part of the discussion.
लेकिन मुझे लगता है यह जो हमने अभी चर्चा की यह काफी महत्वपूर्ण थी.
So thinking in terms of serving something bigger than yourself.
इस बात की सेवा करना जो हमसे कई अधिक है.
Serving the Dhamma.
धम्म की सेवा.
And through the Dhamma, serving other people.
और धम्म के द्वारा और लोगों की सेवा.
And serving the Dhamma through the order and movement.
और धम्म की सेवा अपने संघ और आंदोलन के द्वारा.
So that we give ourselves up to something bigger than ourselves.
तो हमसे जो बातें अधिक है उच्च है उसको हम दे देते हैं.
That means a lot of work on yourself so that you're really conscious of yourself.
तो आप अपने आप के ऊपर अधिक काम करते हैं ताकि हम अपने बारे में अधिक सजग होते हैं.
Otherwise subtly you're doing these things for duty but really for approval, praise, garlands, etc.
लेकिन हम इसलिए भी करते हुए करते हैं कि हमें प्रशंसा हो हमें लोग देखे हमें हार तुरे मिले इसलिए.
Oh look how I'm doing my duty.
देखिए मैं कितना अच्छा मेरा काम कर रहा हूँ.
It becomes another kind of clinging.
यह दूसरी आसक्ति है.
But that sort of duty, you don't care whether anybody else notices or not.
तो ये कर्तव्य ऐसा है कोई आपको देख रहा है नहीं देख रहा है इसकी आप चिंता नहीं करते.
You don't say it at some point, after all I've done, they don't recognize me, my name was not called out in the thank you.
अब मैंने इतना सब किया और मेरा ही नाम नहीं आया आपके पुण्यानुमोदन में या आभार प्रदर्शन में इतना सब करके फायदा क्या है.
No flower for me.
मेरे लिए कोई फूल नहीं था.
He got one but not me.
मुझे मिला फूल लेकिन उनको नहीं मिला.
You don't think like that at all.
ऐसा आप नहीं सोचते.
Or if you do think like that, you immediately think, no, I wasn't doing it for the flower.
अगर आप ऐसा सोचते भी है तो फिर आप सोचे कि मैं फूल के लिए नहीं किया.
I was doing it for the Dhamma.
मैंने धम्म के लिए किया.
So let's go and do our duty.
तो हम हमारा कर्तव्य करें.